It is a very wonderful system. In body also, from 9 to 12. तुम्हारे पास में से होता नहीं है अब इसको लेना पड़ेगा जितने प्रकार की कामनाएं लौकिक पारलौकिक हो सकती है संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं संसार का अनेक ब्रह्म लोग बहुत ब्रह्म काम सारो सारोख सारो वैकुंठवती सारो द्वारका नदी रामचंद्रवती जत रकम सामना है सब रकम सामना पूर्ण करे जे बन तार नाम हे सामना सामने वाले अत्यंत रुचि अत्यंत मनोहर अत्यंत सुंदर बंदे बंदे सामने बल अत्यंत सुंदर रुचिकर मनोहर कृष्ण मन के हरण करे श्रीमती राधिका मन के भोग गोपी के मन के हरण करे एक जन तार नाम काम अपराधी सामना विलास क्षेत्र ऐसा सुनी एक अन्य जब एक जन तार नाम होते এখানে যে চৌরাশি তীর্থ চৌরাশি কুঞ্জ চৌরাশি খম্ভ আর অসংখ্য তীর্থ এখানে সাত কোষে পরিক্রমা এখানে যেরকমের বর্ণনে সাত কোষের পরিক্রমা এখানেও সাত তার মধ্যে কামেশ্বর মহাদেব কালকে আপনারা দিয়েছেন তিনি যেরকম আছে বৃন্দাবনে যে গোপীশ্বর মহাদেব এখানে সেই কামেশ্বর মহাদেব তিনি লক্ষ্মী পারলৌকিক ধারণা দিয়েছেন অপ্রাচীন সব ভাবনার দিকে বলতে পারেন এই জন্য তার নাম হচ্ছে কামেশ্বর মহাদেব এখানে সে চরণ পাহাড়িতে আপনারা দিয়েছেন আহ্বান করেছি সব চাবিরা ওখানে তাছাড়া ওই দেশের আছে ওই পাহাড়টাই গড়ে যাবে আর যেখানে সেখানে জাতি ধরে অর্থখানে সভা গণে কোটি কে পাশ মে ছোটি বৈঠক বড়ি কে পাশ পাহাড়ি পাহাড়ি পর বড়ে বড়ে পাহাড় চার পাহাড়ি ওর নন্দগাঁও बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर अपू उनके चरणों में लोग कोट हो गए और भक्ति के बीच कृष्ण के चरणों से माना जो भागवत में बहुत सुंदर रूप से दिया गया था उन चरणों को देख करके उद्धव जी भाव विभोर और दीपक बाकी में जो लोकी कुंज है लोकलोकी कुंज माने क्या है एक तो कृष्ण अपने कथाओं के साथ में सरोवर में स्नान करते थे और वहां पर लुक लुकी जल में जिसमें डूब जाते तथा लोग उनको खोजते थे कि जल से उतर आप इससे डूब करके कभी उधर कभी घर निकलते और कभी कभी कटिया भी उसी पर उसी कुंज में आ गई और एक छोर पर सन्यास नाम कटी दूसरे छत पर ये और कृष्ण डूब करके मगर का विस्तार करते थे और उस पारदेशी की राधिका जी के चरण को स्पर्श करते और अच्छा जी कभी कौन हमारा चरण छू लिया इस प्रकार से क्रीड़ा विलास करते उसको आंख समझाऊ की लुक लुकी बोलकर लुका लुकी लुका चोरी लुका चोरी मैंने किया आंख बंद कर दिया किसी का और सब लोग ठीक गए और जिसका आंख बंद किया है वो जाकर के खोलेगा सब कठिया दिखा के कृष्ण के आंख को बंद कर देने की और जाती थी कृष्ण कुंजियों में और कृष्ण उनको खोजने के लिए जाते थे अभी राधा जी के आंख बंद कर दी जाती वो खोजती थी इस प्रकार से ये क्रीड़ाएं सब होती थी और भी माँ का लीलाओं का वर्णन है इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती जी लुकलुकी कुंज के पास में नीचे स्थल वो है उसी के पास में रह करके बहुत दिन होता है सोचा कि 14 वर्ष ना कि कितना वर्ष यहाँ पर रहे एकदम निर्जल स्थान वहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर भूत पिशाच भी नहीं जाएगा आदमी डकैत भी नहीं जाएंगे और उस स्थान पर विकट बने में नीचे और वहां रह सके कभी आते सामने वाले कुछ भिक्षा कर ले जाने तो कभी आते नहीं भक्त लोग उनको जा सके वहीं पर पीछे दे देते तो खा लेते और कभी वो भी नहीं दिन रात भजन करते वो प्रबोधानंद इसके बाद में तो फिर वो वृंदावन में गए जहां फिर उनका समाधि और भजन यमुना देवी का इसलिए प्रबोधानंद जी का यहाँ पर स्थान बहुत प्रसिद्ध है लोगों के कुंड के पास यहाँ पर पांचों पांडवों का स्थान कामेश्वर मंदिर के पास ही में है कामेश्वर जी का स्थान पांचों पांडवों पांचों पांडवों यही पर रहते थे सब रहते थे पांचों पांडवों और सुद्योधन में पांच हाथ में लालू आदि युद्ध क्रीड़ा ताकि छोड़ पड़े दुर्योधन लाके जीते ले लो अराज्य जीते ले लो द्रौपदी पर्यंत के जीते ले लो तपन शेष पर्यंत पांच पांडव वर्ष 12 वर्ष जन्म बनवास और 1 वर्ष जन्म गुप्त बनवास तब तारा यही सामने बने थे तारा राष्ट्र यही खाने की जम्बक राष्ट्र के लिए किले देवी है और बहुत समझ होता है यही खाने भरवे संगे वक्त संगे आज शादी कथा उठा बोला आप लोगों ने सुना होगा ये सब वहीं पर हुआ था महाराज युधिष्ठिर के सबसे बाधिता से उसे जप करे और बाकी पांचों चारों पांडवों का भी जीवन दान दिया और महाकाल और यही पर विमल कुंड है विमल कुंड पर बहुत सी विधाएं कृष्ण की विमल विमल निर्मल अपराधित लीलाएं हुई इसलिए उसका नाम विमल एक विमल राजा के द्वारका की तरफ में उनकी 16,000 कन्याएं थी नारद जी से पता लगा हम उन्होंने पूछा कि हम अपनी लड़कियों की शादी करना चाहते हैं और युवावस्था में प्राप्त हो गई है आपको एक उचित वर बताई उन्होंने उचित वर एक है वो कौन है कृष्ण है ये कृष्ण से कैसे शादी होगी तो कृष्ण की दामों के पास में यहाँ से ये भक्त हैं उनसे ही विनय किया फिर उनके कहने से उन्होंने आकर के विमल कुंड में तपस्या की कृष्ण को प्रसन्न किया अशोला जी कन्या होते थे, आपने जिसकी सबसे बड़ी जो कन्या थी उसका नाम देवला थी, शब्दों के साथ में ध्यान कर कहते हैं कि यही 16,000 जो कन्या थी पूछे थे वो द्वारका में महिषी बनी थी।
यहाँ पर नरक दूसरे नहीं भेज देना
चाहिए, दूसरा जन्म दूसरा कल्प
नहीं का। जैसे कि श्रीमती राधिका जी सत्यभा नाम हुई, चंद्रावती जी हुई है, पांच जन्म ने कभी कैसे फेंक दिया कैसे ये सब उसमें
ललित माधव नाटक
ये सब पाठ वर्ण किया है, ये कैसे ये सब हुआ विशेष रूप से जानने के मौका में देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। राधा जी और चंद्रावती कौन थी, चंद्रावती थी रुक्मी और राधिका जी सत्यभामा थी, और इनकी जो आठ जो गोपियां थी प्रधाना ये आठों यहाँ पर अष्ट वैश्या ये रूप गोस्वामी ने दिखलाया है। उसी तरह से ये 16,000 जी इनकी कन्याएं वहां पर जाकर के जहां कहां किसी किसी राजा के साथ में चली गई थी, राजा ने उनको पालन पोषण किया, उनकी शादी कर दी, जो राजकुमारी थी ना सासु उनको वहां पर कन्या ने उसने उनके साथ विवाह किया, एक देश का नाम विमल। ये विमल कुंड पर ही पांचों पांडव लोग रहते थे, उसके पास में पंच सरोवर है, यही पर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था, जयद्रथ जा रहा था कहीं और पांचों पांडव इच्छा के लिए कहीं गए थे, वो अकेली थी और इतने में जयद्रथ ने उनको जोर से पकड़ कर उनको रखने दिखाया। उन्होंने सोचा कि हमारा ये इस तरह से देवर जैसा लगता है, हमारी बहन का ननद हो ही है, ननद कौन थी दुर्योधन की बहन
दुष्कला,
और उसकी शादी जयद्रथ से हुई थी इसलिए उसके नल धोलिए लगते थे। ये सोचा कि हम क्या मजाक मजाक कर रहा है, किंतु मजाक नहीं था, उसमें इनको जबरदस्ती रथ में बैठा दिया और नहीं कर दिया, द्रौपदी भी रोने लगी और जो उनसे चिल रहा है किसी प्रकार से पांडवों की कानों में ये सब पड़ी भीम और अर्जुन। आजकल मैं देखा कि द्रौपदी ने वही रो रही पांचाली और जो रोने के बाद की तरफ क्या किया देखा कि जयद्रथ उनको पकड़ कर सुन ले जा रहा है। उस समय में भीम जी ने रथ चल नहीं रहा है सनाथ जी और कुछ रहे तो देखा कि यह रथ अभी नहीं चल रहा है, रथ की अपेक्षा अधिक देख से चलते थे कौन लोगों ने किया और अर्जुन ने क्या किया, अपनी ऐसा मारा कि उसके घोड़े के चारों तरफ से एकदम हाथ जाने लगे, घोड़े ठहर गए, इस समय भीम ने उसको पीछे से जाकर के मतलब भीम और अर्जुन ने करके अर्जुन के रथ में
बांधे
से बांध करके उसको द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी अब सब रो रही थी और जब देखी कैसे इसको पकड़ करके ले आए तो अर्जुन और भीम दोनों बड़े बिगड़ गए। भीम ने कहा कि इसको मारो खत्म कर दो और अर्जुन भी सुरक्षित है कि अभी इसको मारेंगे, किंतु द्रौपदी के चरण में इसने अपराध किया है, इसे द्रौपदी के पहले पास ले जाए और वो जैसा आप कहे वैसे हमने इसको डर उस समय में कृष्ण वहां थे। द्रौपदी जी ने कहा, उन्होंने पूछा कि तो अभी मार डाले भगवान का मान खाया मारने के लिए जो तब द्रौपदी ने कहा नहीं, जैसे ये हमारे कौन हैं सत्य ये देखो, जब इसे मारोगे तो तुम्हारी बहन बहन विधवा होगी रोएगी वो कहाँ रहेगा, यदि तुम्हारी बहन होती तो भर तो है जो सब और इसका ये पति है, जैसे میں بیمار ہو جاؤں تو میں ہوں گی تم لوگ رہو گے, اسی طرح سے یہ بیمار ہو جائے گی مت مارو. تب تھا کرشن نے کہا کہ اب ہم کیا کریں, دروپدی کا کہ مت مارو اور یہ لوگ آتے ہیں کہ پتی کیا کریں کہ ہم جو بھی ماریں گے. کرشن نے کہا یہ جیت کے جاؤ کیا, انہوں نے کہا کہ ایک بات اپمان کرنے سے وہ مانوی کی اپیکیا ابھی بڑا ہو جاتے ابھی ابھی. اس لیے اس کی ساری ایسا کماؤ آتا موٹ کما دو پورا پورا اور تانی رکھ دو, یہ مسلمان ہوا ہے تین کرتے ہیں نوٹ ہٹا دیتے ہیں چاہیے اور کسی لوگ کیا کرتے ہیں نوٹ رکھتے ہیں چاہیے اس لیے ان کا اندر کرنے والی یہ مسلمان ہے, اسی لیے وہ اسلوں پر تیاری اور اس چیز سے پانچ چوٹی آ رہی ہیں ایسے کما کر کے مسلمان لوگ ٹوپی پہنتے ہیں نا تو اس کے اوپر سے ٹوپی رکھتے ہیں, دیکھا ہے لال لال پیپر نہیں رکھیں گے کتوں کو چڑھائیں گے ان کی بٹ چپی تو سی سی چلتے پیسے نہیں چلتے کیونکہ ہندو پیسے چلتے ہیں اوٹا سب کا ان کا وواہ کب ہوتا ہے اچھے ہندوؤں کا وواہ کب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ان کا سب بڑی چیز رواج سب
ہندو کا رات میں
ہم لوگ کا وواہ رات ہوتا ہے
دوپہر بس وہ مخ سے بدو جیسے کھاتے ہیں سب ان کا اور سندر پیپر نہیں بنتے ہیں وہ ہمارے پاس تو ہوتے ہیں تو یہ جیسے سارے پیسے انہیں کے بنتے جا رہے ہیں انت میں کرنے کے سانے سے وہ ساتھ یہ کما دیا گیا تاکہ کچھ ایسے ہی کمائی گئی اور جس کے بعد میں پنچ سیکھا اس کو رکھ دے کر کے اس کو چھوڑ وہ لگی کو بتا کے ہم اور ان کا پیچھے سے پیچھے ضرور بند کریں گے, اس لیے سنسد کی آرادھنا کی اور اس سے بر منگا جس کو کوئی نہیں مار سکے, جبھی اس کے پتا جی کوئی مار بھی دے اور پتا جی اس کے چیز کو پھینک دے تب بر مانگ جو آج تاریخ ہوا میں باڑ مارا ٹھیک کر گیا اور اس چیز کو لے کر کے جب اس وسطو کی پرشاسن کام کو کر رہے تھے تو جائے نمک جائے نمک اس طرح سے یہ تھوڑا سا بول دیجیے بولے گا تم
In the beginning, Srila Gurudev was explaining how, by the mercy of Shishi Guru and Gauranga, we started our parikrama in Vrindavan.
You can come this side, like that. There are so many places to see.
Some people are after the hint,
some people are looking at the kitchen.
We started our parikrama from Vrindavan and we took vow as Jamuna Devi. Then we went to different places in Mathura, Madhuvan, Talvan, Babulavan, etc. And then we also came to Govardhan. We did parikrama there. We went to Radhakund, Shyamkund. We went for a day to Deeg. We stayed there for a night. And then we came yesterday to Kameshwar, to Kamnivas. And here we went to different places. So in between, Srila Gurudev commented on Srila Dipka Maharaj's lecture and said, whatever Srila Dipka Maharaj has spoken is very valid. And he spoke at length about how it is very important that we must be careful to avoid anarthas, which is not favorable for our devotion. Srila Dipka Maharaj was pointing that though it is said that if we develop some taste for chanting, if we develop some taste for Harikatha, if we develop some taste for the pastimes of the Lord, then automatically attachments will come for material objects or material sense objects. Srila Gurudev said, yes, this is okay, this has to be considered, but at the same time, in Gita, the verse says, param drishtva nivartante, vishya viniharaste dehinam param drishtva nivartante. In this verse, it is said that unless one develops some little bit amount of taste or interest for Harikatha or such things, or chanting holy name, he will not be able to give up material sense objects. But on the other hand, if by the mercy of sadhu, he is able to develop some anurag in his heart for these things, then automatically vishaya anurag, his attachment for sense enjoyment will go away. Some little desire to serve Krishna, when manifests in our heart, it gives us all the strength to give up unwanted things. To the degree one engages in such activities of devotion, hearing Harikatha, serving in the association of sadhu, chanting holy name, to that degree he will automatically and easily will be able to give up material sense enjoyment. Otherwise, this is not possible. And simultaneously, while doing this, we should also be very careful to try to avoid things which are not favorable for our devotion. This has to go together. And then Srila Gurudev spoke about Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Today is his day, and we'll hear during the day about that. Now, yesterday we were in Kamyavan and we went to many places. First, Kamyavan. What is the meaning of Kamyavan? Kamya means different desires. Desires, it refers to desires, things which we want. So that forest which can fulfill our all desires. All desires means everything, either material or spiritual or supremely transcendental. This forest can fulfill all the desires. And also the meaning is suramya rutikar, means which is very fascinating, which is very beautiful, and the forest is so much beautiful and so much fascinating that it also attracts Krishna's heart. It also attracts Gopi's heart. It also attracts Srimati Radhika's heart. And thus they come and perform so many wonderful pastimes in this forest. This forest can fulfill all the desires. And in this forest there are many, many places to visit. There are 84 wells, 84 pillars, and unlimited other places where we can have darshan. Just like we go for Govardhan Parikrama for 7 square miles, similarly this forest also has a circumambulating path of 7 square miles. Just like in Vrindavan we have Shivji in the form of Gopeshwar Mahadev, here he is residing in the form of Kameshwar. And here also, he is capable to fulfill our all desires, either material or spiritual. So if we pray very sincerely to him, then he can give us some entrance in this pastime. And then, we also went to Charan Pahari, the place where Krishna played on flute and called all the cows and calves. And he played flute in such a absorbed mood that what you speak of these cows and calves, even the stones melted and Krishna's footprints were marked on the stones and rocks. There were also footprints of cows and other calves and cows, but over the period of time gradually they have diminished, and now also we see very few Krishna's footprints, we just saw one. So there's also at one place, there's also two more Charan Pahari. One is at Choti Baithan and Badi Baithan. So that is comparatively smaller hill, but it has bigger footprint. And this one has small footprint, but it is called bigger hill. Then there's also Charan Pahari at Nandgaon. This is the place where Akrura went, and when he saw Krishna's footprint, he started feeling so much ecstasy, and his heart started melting in remembering Krishna's different pastimes. This whole pastime is very nicely described in Srimad Bhagavatam. Then this was also Lukluki-kun. Lukluki-kun, Krishna performed many pastimes here with his sakhas and sakhis also. Lokloki means Lokloki, hide and seek. Krishna used to dive in this pond and used to hide somewhere, and Sakhas would try to find him. This is how they used to play. And sometimes Sakhis would also come there, and they would bathe on the other end of the pond, and Krishna would bathe on the other side of the pond. And then what he will do? He will dive in the pond, and like a crocodile, he will swim in the water and go near Srimati Radhika where she is taking bath, and he would try to touch her feet. And then he would do that, and Srimati Radhika would be amazed. Oh, who is touching my feet? So this is how wonderfully he used to play this pastime. And near this cone also, we have seen Srila Prabodhananda Saraswati's place where he used to stay, where he stayed for about 14 years and did perform bhajan. This is a very secluded place, and at that time it was even more beautiful and more natural. And nobody used to come here in such exclusive place. Srila Prabodhananda Saraswati used to do his bhajan. He would not even go to beg, but sometimes very rarely he would go and get some bhiksha. Otherwise the village people would come and give him some bhiksha, and that's how he used to live and do his bhajan. And afterwards, later on, he went to Vrindavan, and we have seen that place when we did Parikrama at Kaliyada. We have seen his samadhi. That's where he stayed afterwards. Nearby in the forest where we went to Kameshwar Mahadev, nearby to that place is also the same place where five Pandavas did many pastimes. And this is the place where Pandavas played gambling match with Duryodhan, and he defeated them in a crooked way by cheating. And thus they had to accept 12 years forest exile and 1 year
incognito.
So 1 year I can't call it afterwards, but in disguise. Yeah. So they will, nobody will be able to find them. They will hide in such a way. So this is the same place where Bhim, he killed Hirambak's demon. And this is the same place where Yudhishthira Maharaj had conversation with Yaksha, who was in the form of
crane.
Yeah, he was in the form of crane. And first his four brothers, when they came to drink the water of that pond, this crane asked some questions and they refused to answer, thinking that what this crane can do to us, we are so powerful. But the result was, as they touched the water of the pond, they all fainted. And later on, when Yudhishthira Maharaj came, he very nicely answered the questions of this crane, and the result was, he was so much satisfied and pleased that he gave life to all the four brothers, and everyone left very happily back to their places. And nearby is Bimlakund, and in Bimlakund Krishna also performed many pastimes. And Srila Gurudev said, why the name of this kund is Bimlakund? Because his all pastimes are Bimal. Bimal means spotless, which is completely pure, without any contamination of any other sort. So this place is called Bimlakund. And this is the same place where there was a king whose name was Bimal also, and he had 16,000 daughters. When the daughters grew up and became eligible for marriage, he was worried, and he was thinking where to give his daughters in marriage. So he took some advice from Sri Narad Muni, and Sri Narad Muni told him, well, I can tell you that there is only one person on the earth now who is very qualified and the best match for your daughters, and he is Krishna. So the king was now thinking, how can I get Krishna to marry my daughters? So on the advice of Narad Muni, he went and performed some tapasya, and same place, and first he went to Bhishma Pitamaji. And then, because Bhishma Pitamaji is devotee of Krishna and he knows the heart of Krishna, so on his instructions he came back and performed austerities and pleased Krishna. And thus, later on, Krishna agreed to marry his daughters. And then here, we were trying to reconcile how are these are the same daughters who were also kidnapped by Narakasur and were in his prison for a long time. And later on, Krishna married those. So Śrīla Gurudev explained here, just like in Lalit Madhav, we hear in greater detail how Srimati Radhika, Satyabhama is manifestation of Srimati Radhika in Dwarka and Chandra.
Manifestation himself. He came as Satyabhama. And Chandra himself, Haridas.
Came as Rukmini.
Yes.
This is all explained in Lalit Madhav. So similarly, if we read this scripture, then we can understand how these same daughters were kidnapped by Narakasur and Krishna later on married them. First he rescued them and then he married them. And this is a place also where another pastime took place when Jayadrath, he kidnapped Draupadi. Draupadi and Jayadrath had one relationship. There was one sister of Duryodhan, her name was Dushala, and Jayadrath was married to her. And in this relation, Draupadi, in Hindi we have this relation we call Nandoi, in English,
brother-in-law,
yeah. So he was like brother-in-law. So she did not took it very seriously when he tried to took her. She said, okay, he's my brother-in-law, so if he's taking me anywhere, no problem. But then later on when she sensed that his desires were not pure, then she started crying and she started shouting. And at that time, none of the five Pandavas were there. So when they came back and they found Panchali was not there, she was missing. So they became very serious and they become very concerned where she is. And in the meantime, they heard her shout, her screaming. And then they could understand that Jayadrath is trying to kidnap Draupadi. So he is very powerful and he took one chariot, horse chariot, and he started running towards him. But this horse chariot was not running so fast. So Bhim, he got off the left chariot and he started running even more faster than this horse chariot. So because he is son of Pavandev, that's why he is so powerful. And on the other side, Arjun, from that place only where he was standing, he shooted fire arrows. And those fire arrows, they went to Jayadrath's chariot and they surrounded him, so he could not move. And in the meantime, Bhim reached there, and he caught hold of Jayadrath. So both of them were very angry, and in this angry mood, they were just almost like killing him. But then they thought, first we should take Jayadrath to Draupadi because he has offended her. So we should take Jayadrath to Draupadi and see what she wants, and then we will punish him. So when they brought Jayadrath to Draupadi, Krishna was also standing, was present there at that time. And Draupadi, she was very annoyed, and they asked, so you tell us, what shall we do with this Jayadrath? Shall we kill him right now? And just saying these words, they took out this force and they wanted to kill him. But Draupadi said, wait a minute, we must think this point that he is husband of our sister, so your sister. If you kill him, then she'll become widow and this will be so much painful, we cannot bear this. So I would not prefer that he should be killed. But Bhim and Arjun were so much annoyed and they were so much angry on Jayadrath, they wanted to kill him. So now Krishna was standing there and he proposed in between the decision and said, well, Draupadi wants that he should not be killed and you want to kill him. So the best option left for us is, because he is very respected person. So for a respected person, if we insult him, then this is even more dubious than death, more painful than death. So we should just insult him. So they made a plan. And what they did is, they took off his mustaches and let the beard remain. And on his head, they made five different chotis. So Śrīla Gurudev here was explaining how all the Muslim people, they also do like this. They do everything exactly opposite to what Hindus do. Hindus, they keep mustaches and they don't keep beards sometimes. But Muslims, they would keep beards and they will not keep mustaches. And so many other things. They make chapatis on the other side of the hot plate and we make on the other side of the hot plate. We had marriage ceremonies in the night and they would have marriage ceremonies in the morning. So anything, if it was possible for them, probably they would eat from the rear side of our body, but they can't do that. So like that, all these Muslims, they are followers of Jayadrath. Now, Jayadrath was feeling so much insulted, and as he left that place, as he was leaving, he, in his heart, took a kind of vow that I am going to kill this Arjun one day. So in order to do that, he went to perform austerities to please Lord Shiva, and then he took a bone that nobody should be able to kill him unless his head, if it's cut it from his body and his head is thrown off the hand of his father, until then he will not be killed. So that's how Krishna killed him, Arjuna killed him. In the battle of Kurukshetra, Arjuna shot his arrow in such a way, and it was the time when his father at his place was offering water to sun god in the evening. So now when Arjuna shot his arrow, it acted so fast, he cut his head and took his head to his father, and he was standing with closed eyes and he was offering water to sun god, saying Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha. His eyes were closed, and just in a flip of second the head came in his head, and when while he was just offering the water, the head also went off. So then he realized, oh, what did I do? But it was too late, the head had already slipped from his hand. So this is how Jayadrath was killed. And
after the presentation of Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. विमल सुंद से आरोप ऐसी जब पाकिस्तान वालों विमल सुंद के पास में रहते उस समय दुर्योधन ने किसी प्रकार से दुर्भाषा ऋषि जी को निमंत्रण किया हस्तिनापुर में और निमंत्रण करके उनको खूब 56 प्रकार का भोग खिलाया बहुत अच्छे अच्छे चीज दुर्भाषा ऋषि तो आशुतोष है शंकर जी के अवतार है कुछ भी हो और उनको प्रसन्न अपार थोड़े नहीं प्रसन्न हो जाएंगे तो खाने पीने के बाद बड़े प्रसन्न हो गए और बोले दान रूपी पर मांगो उन्होंने कहा जिसे दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा वर मांगे जो पांडवों का भी ध्वंस हो जाए किंतु ये तो उनसे नहीं कहने की वो काफी ध्वंस कर दो उन्होंने कहा कि प्रभु एक बार है हमारे बड़े भैया लोग हमारे आदरणीय भाई लोग काम में बने हैं जैसे आपने हमारी इच्छा को पूर्ण किया वर मांगने के लिए कहा और हमने आपको आदर किया आप वहां पर पधारिए और वहां पर उनके पास में जाकर के अपने साथ साथ या शिष्यों के साथ में पहुंचिए और वो लोग आपका आदर करें और हमको जैसे वर दिया हमको भी वर दे आए और 7000 शिष्य के साथ में जब जाएंगे जब द्रौपदी खा चुकी हो जाएगी और उसका बर्तन बन गया होगा तब जाएंगे जो मैं कहा अच्छी बात है शुरू करके और 7000 के साथ में अपने शिष्यों के साथ में ये विमल कुंड में दोपहर के बाद में जब आए जब द्रौपदी जी भी खा चुकी थी सबको खिला चुकी थी और बर्तन को भी मार करके ये बर्तन कैसा था ये किसी ऋषि का दिया हुआ यह था सूर्य का सूर्य देने दिया था द्रौपदी को इसलिए दिया था कि जब तक तुम भोले नहीं करेगी लाखों आदमियों को खिला देगी और जब तुम खा करके बर्तन को माटी अंधा करके रख देगी इसलिए द्रौपदी जी सब लोगों को खिला पिलाकर सबको खिला पिलाकर और पांचों पांडवों को भी खिलाकर जब देखा कि कोई अब बाकी नहीं है तो अंत में उसने खाया और खा करके उसको माजा की करके और कुत्ता कर
कुत्ता अंदर में
कुत्ता
खटिया में डुबा
ब्रह्मचारी
जाएगा।